सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमान, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल, सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान।
अतः कार्यों को निपटाने में लगे हुए थे और मैं बराबर तुम्हारी ओर देख रहा था। मैंने देखा कि तुम बहुत व्यस्त थे और बहुत आनंद फानंद में तुमने अपने कार्य क्षेत्र में जाने की तैयारी की। मुझे लगा कि शायद तुम थोड़े निश्चिंत होकर फ्री होकर मुझे याद करोगे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। भोजन के पूर्व जब तुम अपने आसपास नजर दौड़ा रहे थे तब मुझे लगा कि शायद तुम मुझे देख रहे हो, तुम मुझे याद कर रहे हो, लेकिन तुमने अपने एक मित्र के आते ही उसके साथ बातें करनी शुरू कर दी और उसके साथ बैठ करके तुमने भोजन किया और मैं किनारे खड़ा प्रतीक्षा ही करता रहा कि तुम मुझे भी भोजन करते हुए शायद याद करोगे। जब कार्यस्थल से वापस तुम अपने घर पहुंचे तब मैंने ये आशा रखी थी कि शायद अब तो तुम निश्चिंत होकर मुझे याद करोगे, लेकिन तुमने टीवी चालू कर ली और उसके सामने बैठ गए। मैं सब्रपूर्वक इंतजार करता रहा इस आशा से कि शायद अब तुम मुझे याद करोगे, लेकिन रात्रि भोजन लेकर गपशप करते हुए तुम अपने बिस्तर में पहुंच गए। अब मुझे लगा कि शायद अंत में तो तुम मुझे याद करोगे ही, लेकिन तुम बिस्तर पर जाते ही निद्राधीन हो गए और मैं प्रतीक्षा करता रहा। शायद तुम्हें ये एहसास नहीं होगा कि मैं हमेशा तुम्हारे आसपास ही रहता हूं। मेरे पास तुम्हें देने के लिए बहुत कुछ है, मैं तुम्हें बहुत कुछ देना चाहता हूं, मैं तुमसे बहुत अधिक प्यार करता हूं। चलो फिर से तुम सोकर उठ रहे हो और मैं फिर एक बार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं, दिल में तुम्हारे लिए बेहद प्यार लेकर इसी आश में कि आज तो तुम अवश्य मुझे याद करोगे, तुम्हारा परम पिता। कितने भावपूर्ण शब्दों में परमात्मा पिता ने हमें ये पत्र भेजा है और ये उम्मीद रखी है, ये आश रखी है कि मैं हमेशा तुम्हारे आसपास रहता हूँ, तुम्हें बहुत कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन तुम शायद बहुत व्यस्त हो। इस पर हम सबको जरूर विचार करना है। आइए इसी सुंदर बात के साथ आज की इस कड़ी की शुरुआत करते हैं और अभिनंदन करते हैं भ्राता जी का। भ्राता जी बहुत बहुत स्वागत है।
थैंक्स।
परमात्मा का ये पत्र पढ़कर ऐसा लग रहा है कि जैसे सचमुच हम बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, अपने कारोबार में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उसकी ओर देखने का हमारे पास वक्त नहीं है और वो लगातार हमारी ओर देखे जा रहे हैं कि हमें सब कुछ दे दें।
मुझे भी बहुत आनंद आया पत्र पढ़कर सुनकर। मैं सोचता हूँ हर व्यक्ति को ये पत्र दो बार रोज पढ़ लेना चाहिए। वैसे भी किसी प्रियजन का पत्र आए तो मनुष्य उसे आंखों पे लगाता है, चूमता है
जी,
कई बार पढ़ता है। भगवान तो हमें सबसे ज्यादा प्यार करता और हम भी उसे युगों से प्यार करते आए, तो क्यों ना उसके इस पत्र को दो बार रोज पढ़ लिया जाए और हम महसूस करें कि सचमुच उसके मन में हमारे लिए कितना प्यार है, कितनी भावनाएं हैं, वो हमें क्या क्या देना चाहता है, और इससे हमें याद रहेगा कि हमें उससे भी अपना कनेक्शन रखना है, क्योंकि वो हमें सब कुछ देने के लिए हमारे चारों ओर रहता है, ऊपर से हमें बार बार देखता है। कभी ये मेरे से कनेक्शन जोड़ें और मैं इन्हें शक्तियां दे दूं, ये समस्याओं में उलझ गए हैं, ये मुझसे टूट गए हैं, कभी ये मुझसे कनेक्शन जोड़े, मेरी ओर देखें, तो मैं इन्हें समस्याओं का समाधान दे दूं। तो वास्तव में हम बहुत फायदा उठा सकते हैं संगम युग पर अपने परम पिता का। वो हमारा होकर आया है, आज तक हम उसे भगवान कहते थे, अब वो हमारा है, हमारा परम पिता है। केवल पिता ही नहीं, हमें सब कुछ देने आ गया है। पिता तो आज भी दुनिया में बहुत हैं
जी,
लेकिन ऐसा परम पिता जिसकी हमें तलाश थी और जब वो हमारे पास आया तो आते ही उसने कहा, बच्चे मेरा सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन लेना तुम्हें अधिकार से है, मुझसे कनेक्शन जोड़कर है। तो हम अपने कार्यों में इतने व्यस्त न हो जाएं, ये पत्र हमें रोज याद दिलाएगा कि हम उसे भूल जाएं जिसने हमें ये जीवन दिया है, हम उसको विस्मृत कर दें जो हमें वरदान देना चाहता है। तो हर कर्म से पहले हम जरा उसकी ओर देख लिया करें, कितनी बड़ी बात है वो हमारी ओर देखता है
जी,
कि इन्हें कुछ दे दूं, इन्हें सुखी बना दूं, इनकी चिंताएं और गम हर लूं। हम भी हर कर्म से पहले उसकी ओर देख लिया करें, उससे ब्लेसिंग्स ले लिया करें, उसके प्यार की अनुभूति कर लिया करें, शक्तियां ले लिया करें, और गुड नाइट और गुड मॉर्निंग करना तो भूले ही नहीं, हमारा जीवन आनंद से भर जाएगा।
बिल्कुल, जैसे तीन विशेष स्थान पर उन्होंने हमें याद दिलाया कि जैसे ही तुम सुबह उठे तब भी मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें कुछ दूं, जब तुम भोजन करने के लिए बैठे तब भी मैं सोच रहा था, और जब रात को भी तुम अपने शयन कक्ष में गए सोने के लिए। तो कम से कम भ्राता जी ये तीन समय तो ऐसे अवश्य होने ही चाहिए जबकि हम प्यार से उसकी ओर देखें, हाँ, शुक्रिया अदा करें।
हाँ, और भी देखिए, सवेरे उठ के हमें इसलिए उसे याद करना चाहिए कि उससे हमें सारे दिन के लिए शक्तियां मिल जाएंगी, कुछ वरदान मिल जाएंगे, निर्विघ्न जीवन जीने का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल जाएगा, तिलक दे देंगे बाबा हमें। उसके बाद हमें जब हम कर्म क्षेत्र पर जाते हैं तब भी उसे याद कर लेना चाहिए, बल्कि याद नहीं, उसका आह्वान कर लेना चाहिए कि आओ और हमारे साथ चलो। तो कर्म क्षेत्र पर महसूस होगा कि उसकी शक्तियां हमारे साथ काम कर रही हैं। भोजन पे तो श्रीमद् भगवत गीता में भी है, जो व्यक्ति भोजन मुझे अर्पण किए बिना ही खाता है वो तो सचमुच चोर है। तो हम भगवान को अर्पित भी कराएं भोजन, उसकी शक्तियां और गुड वाइब्रेशंस भी भोजन में भरवा लें, ताकि वो भोजन हमारे लिए क्या कहें, अमृत वरदान, बहुत बड़ी औषधि, शरीर को निरोग करने वाला, मन के विचारों को शुद्ध करने वाला बन जाएगा। फिर जब हम कर्म क्षेत्र से लौटें तब भी हमें उसको याद करना आवश्यक है, ताकि कर्म क्षेत्र का जो भी बोझ है हम उसको अर्पित कर दें
जी,
कि अब ये तुम्हारा, और फिर जीवन को एंजॉय करें और रात को गुड नाइट करें, अगले दिन के लिए उससे कुछ प्रतिज्ञा करें, प्यार से बातें करें, और जिसको राजयोग अच्छा आता है वो तो उसको बुला लें, माँ के रूप में बुला लें, उसकी गोद में सोएं तो नींद भी सतो प्रधान होगी, और आजकल जो बहुत बड़ी समस्या हो गई है अनिद्रा की वो भी समाप्त हो जाएगी, स्वप्न भी
बहुत अच्छे
डिवाइन आएंगे।
लगातार हम चर्चा कर ही रहे हैं भ्राता जी कई दिनों से कि अनिद्रा के रोगी बढ़ते चले जा रहे हैं, नींद में भी लोगों को परेशानी और स्वप्न भी उल्टे सीधे आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा इसे परेशान हो रहे हैं, शायद यदि परमात्मा को याद करके सोए तो इस प्रकार की कोई समस्या रहेगी ही।
बस ये खत सबको अपने सामने रख लेना चाहिए और दो बार तो इस पे दृष्टि डाल लें और ये सोच लें कि ऊपर वाला भी हमें याद करता होगा, कितना सुंदर समय आया जिसको हम याद करते आए, वो हमें याद कर रहा है, वो हम पे मेहरबान हो गया है, उसकी मेहरबानी का अगर हम फायदा नहीं उठाएंगे तो हम अपने को बुद्धिमान भी नहीं कहला पाएंगे।
दादा जी एक बात जो एक मानसिकता सी बन गई है या एक ह्यूमन नेचर सी हो गई है, जिसे किसी कवि ने भी लिखा था कि दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोए, और जो सुख में सुमिरण करे तो दुख काहे को होए। तो ये क्या मानसिकता है और कैसे इसमें परिवर्तन लाएं, क्योंकि जब दुख आता है, जब हमें ठोकर लगती है, कोई परेशानी आती है, तभी हम उसे याद करते हैं कि भगवान तू अब तू कुछ कर, कुछ बचा, और जब हम सुख में रहते हैं, एंजॉय करते रहते हैं, पार्टीज करते रहते हैं, तब हम उसे इन्वाइट करना भी भूल जाते हैं कि प्रभु आप भी आओ और इसमें शरीक हो। कैसे बदलें इस मानसिकता को?
इसका कारण एक हो गया कि हम अपने को भूल के बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए। जब हम देह भान में ज्यादा आते जाते हैं तो ये भौतिकता है ना, भौतिकता की ओर हमारा लगाव झुकाव बढ़ता जाता है, सांसारिक साधन, धन संपदा, परिवार, मकान, दुकान, इसमें हम बिल्कुल लिप्त हो जाते हैं। बॉडी कॉन्शियसनेस का ये जैसे वृक्ष है, उसकी शाखाएं हैं ये, तो इसके कारण ध्यान उन सब चीजों में बटा रहता है, और जो मालिक है जो हमें सब कुछ देने वाला है उसकी ओर ध्यान जाता नहीं। अगर हमें इस चीज को समाप्त करना है, भले ये कार्य क्षेत्र हमारा अपना है और हमारी जिम्मेदारियां हैं, उनको हमें पूर्ण अवश्य करना है, लेकिन अगर हम थोड़ा थोड़ा ये अभ्यास भी करेंगे, मैं इस देह से अलग एक आत्मा हूं, मैं तो चैतन्य हूं, अभौतिक हूं, अविनाशी हूं, तो सोल कॉन्शियसनेस बढ़ेगी
जी।
हम चिंतन अवश्य किया करें एक दो बार, मैं तो पीसफुल हूं, मैं तो लवफुल हूं, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं, परम पवित्र हूं मैं आत्मा, इससे स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, सोल कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, और इस सोल कॉन्शियसनेस से ही गॉड कॉन्शियसनेस बढ़ती है, उसकी स्मृति रहती है, उससे हमारा प्यार रहता है। तो अगर हम उठते ही 15-20 मिनट भी आधा घंटा इस अभ्यास में दे दें, तो सारा दिन हमारा बहुत लाइटली भी बीतेगा, हम अपनी दिनचर्या को एंजॉय भी करेंगे, और ये जो शाखाओं में हम अटके रहते हैं जिसके कारण शाखाओं का इफेक्ट फिर मन पर आता रहता है, जो जीवन को सुखी बनने नहीं दे रहा है, उससे भी हम मुक्त रहेंगे और बहुत अच्छा अनुभव रहेगा।
कहीं ये एक मानसिकता जो आजकल बढ़ गई है भ्राता जी, स्पेशली मेट्रोज में, कि यही जीवन सब कुछ है, खाओ पियो मौज करो, जो चीज दिखाई नहीं दे रही है उस चीज के लिए हम क्यों सोचें विचारें, परमात्मा भी चूंकि दिखाई नहीं देते हैं तो उनके बारे में भी लोग कम से कम सोचते हैं, और सोचते हैं कि इसी जीवन का भरपूर आनंद ले लिया जाए। इस मानसिकता के बारे में क्या कहेंगे, कहां तक सच है और कहां तक
ये तो ठीक है कि जो दिखाई नहीं देता उसको क्या सोचना, क्या याद करना, लेकिन जब समस्याएं दिखाई देती हैं
तब
वो भी तो दिखाई नहीं देती ना। जब दुख दिखाई देते हैं, जब शरीर रोगों का घर बन जाता है, जब धन संपदा बिल्कुल बेकार नजर आने लगती है, जब अपने पराये हो जाते हैं, तब तो वो न दिखाई देने वाला दिखाई अवश्य देता है। तो वास्तव में अगर मनुष्य पहले से ही थोड़ी सी अपनी प्रिपरेशन रखे, दुख में तो स्मरण करते ही हैं, लेकिन वो स्मरण स्मरण नहीं है, वो तो पुकारना होता है। योग अभ्यास तो बहुत प्यार का विषय है, परमात्म प्यार में मग्न होने की ये स्थिति है, इसमें अगर हम रहेंगे तो ये दुख के दिन आएंगे ही नहीं। जैसे कबीर ने कह दिया कि अगर सुख में सुमरण करें, अपना नाता हम उससे जोड़ें, तो हमारे अंदर इतनी शक्तियां आएंगी कि हम दुखों को वैसे ही समाप्त कर पाएंगे। तो हमें वास्तव में ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इस भौतिकता को एंजॉय करें। ठीक है, भौतिकता भी एंजॉयमेंट के लिए है, स्पिरिचुअलिटी ये नहीं कहती कि तुम भौतिकता को एंजॉय न करो, तुम अच्छी कार न रखो, तुम फ्लाइट में न जाओ, तुम अच्छा भोजन न करो, तुम्हारा मकान रहने सहने की व्यवस्था सुंदर न हो, वो अति सुंदर हो, स्पिरिचुअलिटी इसमें मना नहीं करती, लेकिन वो मना करती है कि इसमें लिप्त न हो जाओ, ये तुम्हें विकारों की ओर प्रवृत्त न कर दें, ये तुम्हारी मानसिक शांति को नष्ट न कर दें, ये तुम्हारी आंतरिक शक्तियों को बिल्कुल समाप्त न कर बैठें, थोड़ा अपने अंदर को भी टटोलो, क्योंकि यही तो जीवन नहीं है ना। हर व्यक्ति को कर्म क्षेत्र पर रहना होता है। आज कोई कह रहा था, बहुत एक धनवान व्यक्ति से बात हो रही थी, आप ही बोल रहे थे कि भाई जब हमारे पास धन कम था हम बड़े सुखी थे, बड़े मजे से सोते थे, बिजनेस बढ़े, धंधे बढ़े, खूब धन हमारे पास आ गया, हमारा तो सुख ही चला गया। उन्हें अपने मुख से बोला जो जितना धन